वीर साहब मोटे आदमी हैं, सब लोग कहिए माशाल्लाह। इस माशाल्लाह क्यों कहा? माशाल्लाह कहने से नजर नहीं लगती, वरना कहीं मेरे साहब दुबले हो जाए, मैं कराची लेके किस मुंह से जाऊंगा? इनकी बहन इनके रिश्तेदार क्या कहेंगे कि भाई हमारा कैसा तू ले गया मोटा और लाया दुबला? मुरीद को ले गया मोटा, बांग्लादेश से वापस लाया तो पतला दुबला। इसलिए मैंने कहा भाई माशाल्लाह कह दो। तो मीर साहब को हजरत मौलाना अब्दुल्लाह साहब ने एक दफे देख कर फरमाया कि मुझसे पूछा कि क्या मीर साहब का टिकट का किराया जो होता है भाड़ा, ये कुछ ज्यादा होता है या जो आम टिकट होते हैं वही होता है? इनके टिकट का पैसा ज्यादा तो हवाई जहाज कंपनी नहीं मांगती, इसमें भी मजा है। अच्छा, माश की दाल अदरक में लवाजिम बहुत उमदा पकाते हैं ये तो, बहुत उमदा। अरे ये क्या क्या पुलाव इतना उमदा पकाते हैं कि आप लोग खाते रह जाइए। और चाय इनकी म्यारी है। मौलाना अब्दुल्लाह साहब फरमाते हैं कि मीर साहब की चाय बहुत उमदा होती है। और इधर फरमाया अगर ये ना होते तो चाय हम ही को बनाना पड़ता, मदीने शरीफ में फरमाया। तो फरमाया माश की दाल, चूंकि बरेली में एक साहब थे जो माश की दाल को बहुत पसंद करते थे अदरक में लवाजिम, तो हजरत ने
शाम को मेरा तो ज्यादा शाम को जाना होता था, फजर में कम, शाम में हजरत मीर साहब रहमतुल्लाह अलैह इतनी कतली होती थी, हजरत के हुक्म पर बनाते थे। और फिर हजरत वाला ने एक बार फरमाया था, हजरत मीर साहब रहमतुल्लाह ने मुझसे फरमाया कि मैं ऐसे कतली खोलने वाला था कि लोग ज्यादा हैं, तो मैं कतली खोलने वाला था कि दूसरा मैं इंतजाम कर लूं। हजरत फकीर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह मेरे ख्याल में आए थे, हजरत मीर साहब रहमतुल्लाह अलैह मुर्शिद सानी सिद्दीक जमा। फरमाया कि मेहमान ज्यादा थे तो हजरत ने फरमाया चाय के लिए, तो मैंने एक कैतली बनाई तो मेहमान और आ गए। तो मैंने ये देखने के लिए कि कितना बाकी बचा है ताकि मैं और जो है तैयारी कर लूं, हजरत ने फरमाया मीर साहब कैतली खोलने की जरूरत नहीं है। फरमाया कि मैं कसम खाता हूं कि मैं प्याली बनाता गया और डरता गया कि अब इंतजाम करूंगा तो हजरत की डांट पड़ जाएगी। तो फरमाया कि इसके बाद भी चाय बची हुई थी। और ये जो हजरत वाला फरमा रहे हैं ना, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद देखा है कि हजरत मीर साहब रहमतुल्लाह अलैह चाय बनाते थे। हकीकत है कि आज तक वो चाय याद आती है। अजीब व गरीब, एक अल्लाह वाले के हुक्म पर एक अल्लाह वाला चाय बना रहा है अपने शेख के खुद्दाम के लिए। चाय तो और भी बना सकते थे। रात को गए हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह के पास, शेखुल अरब अल अजम आरिफ बिल्लाह हजरत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत अकदस में गए। हजरत खाना खा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हजरत ने शुरू से ही मुझे इजाजत दी थी कि इसको आने दिया करो। हजरत को नजर जल्दी लग जाती थी ना, तो तकरीबन 6 या 7 लोग खाना खा रहे हैं तो हजरत वाला फरमाते आओ मियां बैठ जाओ। तो कभी बैठ गए, कभी खाना खा के आ गए थे तो हजरत मैं खाना खा के आ गया हूं, कभी फरमाते बैठ जाओ। फिर हजरत मीर साहब रहमतुल्लाह अलैह शुगर के पेशेंट, हार्ट का मामला, और एक आदमी शेख के साथ रात दिन साथ है, तो जहरी बात है फिर ये थोड़ी है कि अकेले जाकर खाने चला जाएगा। तो हजरत वाला, अब एक आदमी खाने पर बैठा हुआ है, आप सोचो जरा। तो हजरत वाला फरमाते थे मीर साहब अंडे बनाकर आए, उस वक्त घर से खाना बन कर आता था। तो हजरत मीर साहब रहमतुल्लाह उठ गए, मुस्कुराते हुए उठ गए। अब आप बताएं कि जो शख्स ऐसे मौके पर कि खाना आगे हो और खुद को भूख लगी हो, शुगर का मामला हो, मैं अपने लिए कहता हूं कि मैं अगर अंडा बनाता, मुझे तो आता ही नहीं है बनाना, तो हाफ फ्राई बनाता। सीधी सी बात है कि लोग और ज्यादा हैं, हाफ फ्राई। अब पूरा जितना फ्राई पैन होता है ना, उतना बड़ा आमलेट, तीन तीन चार चार अंडों का आमलेट, और बारीक बारीक प्याज कटी हुई, और हल्का हल्की ग्रीन मिर्च, और जनाब क्या टमाटर शायद मेरे ख्याल में, जो भी ये वो पूरा हजरत मीर साहब रहमतुल्लाह अलैह के बना के पेश करते। अब वो जब तक हजरत मीर साहब दूसरा लेकर आते ये खत्म हो चुका होता। चार चार पांच पांच तीन तीन चार चार अंडों के आमलेट आ रहे हैं, गरम गरम रोटियां। हजरत मीर साहब रहमतुल्लाह अलैह किसी और को भी बोल सकते थे ना, ये तो नहीं कि उस वक्त खुदाम नहीं थे कोई, औरों को भी बोल सकते थे, नहीं, शेख के लिए। मैं इसको कहूं, वो उसको कहे, वो उसको कहे, जब पूछना हो तो एक दूसरे से पूछिए, एक दूसरे देख रहे हैं। और फिर आखिर में अकेले मीर साहब खाना खा रहे हैं। इसी तरह हजरत ने जो माश की दाल फरमाई, पुलाव फरमाया, अब आप अगर कैलकुलेट करेंगे ना, आप हैरान हो जाएंगे कि इतने खतूत के जवाब, रात रात भर हजरत की मवाइज को लिखना, फिर हजरत का बार बार याद करना, फरमाना मीर साहब को बुलाओ भाई, मीर साहब को बुलाओ, اب یہ بھی اللہ نے دل میں بات ڈالی ہے تاکہ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے تھے، لیکن پھر اتنی کتابیں، اتنے لوگوں کو جواب دینا، اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مشورہ، یہ سب اللہ والوں کی کرامت ہی ہوتی ہے. اب کسی کو چائے کی کرامت نہ لگے ہمیں تو لگتی ہے بھائی، کہ اتنے لوگوں کو چائے دی جا رہی ہے اور آخر میں کیتلی ابھی بھی ویسے کی ویسی موجود ہے. وہ کیتلی بھی عجیب قسم کی تھی، ٹوٹ گئی تھی، مارکیٹ میں ہی نہ ملے، باہر گئے باہر نہ ملے کیتلی، وہ عجیب کیتلی تھی. وہ تو بنانے کے لیے دیے تو بنے نہیں، کیونکہ وہ اس قسم کا گول ٹائپ کا اندر کا فلاسک کہاں سے آئے، جو پتہ نہیں کیا اس کو شیشہ جو کہتے ہیں وہ کہاں سے آئے، وہ اس قسم کا عجیب. کیا عرض کریں کہ کھانے پر آملیٹ بنا کر لانا، اسی طرح ماش کی دال، ایک ایک پیس الگ ماش کی دال کا. رمضان میں زیادہ کیا بات کروں پھر خامہ خان. جب حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ سے اللہ نے ملاقات کرائی بغیر استحقاق کے، تو مجھے یہ پتا نہیں تھا ادب کے شیخ کے ساتھ پھر نفلی نماز پوچھنی چاہیے اور ساتھ ہی رہنا چاہیے. پوچھنا کیا، ساتھ ہی رہنا چاہیے اور نفلی روزہ بھی نہیں رکھنا چاہیے شیخ کے ساتھ جب ہو تو. میں نے مجھے تو پتا نہیں تھا میں نے روزہ رکھا ہوا تھا. سندھ بلو سوسائٹی سے اثر کے بعد گئے گلشن سے سندھ بلو سوسائٹی، وہاں چٹائیاں بچ گئیں، حضرت والا کچھ بات فرمایا تھا، اچانک میری طرف دیکھ کے فرمایا تمہارا روزہ ہے. میں گھبرا رہا تھا کیونکہ اس وقت تو جنگل تھا، یہ دکانیں تھوڑی تھی سامنے، دکانیں نہیں تھی. تو میں نے کہا جی حضرت روزہ ہے. کچھ نہیں فرمایا، بلکہ ایک خادم سے فرمایا اس کے لیے بسکٹ لاؤ، پانی تو ساتھ ہی تھا. تو کوئی صاحب تھے، وہ پتہ نہیں کون تھے، وہ سائیکل پر جا کے بسکٹ لے آئے. میں نے بسکٹ کھائے، چائے پیا اور یہ پانی پیا، پھر نماز بھی، پھر ذکر، پھر دعا وغیرہ ہوئی، واپس آئے گلشن اقبال خان کا. حضرت نے فرمایا کہیں جانا ہے تمہیں ضروری؟ میں نے کہا نہیں. فرمایا اندر میرے کمرے میں آؤ. میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کمرے میں بیٹھ گیا. فرمایا میر صاحب میری والی چائے ان کے لیے بنائیں اور گرم گرم چپاتی اور ایک کباب. اور کس طرح تینوں چیزیں ایک وقت میں تیار ہوئیں. اور مجھ سے فرمایا دیوار کی طرف منہ کر کے کھاؤ. اب وہ روٹی بھی وہ جس میں گھی نہیں لگا ہوا، ہمارے یہاں تو گھی یا کوئی سی چیز لگی ہوتی ہے نا، اور گرم گرم کباب اور چائے. کتنا عرصہ ہو گیا جناب، 23 برس 24 برس. آج بھی دانتوں کے اندر وہ مزہ محسوس ہوتا ہے، آج بھی وہ مزہ محسوس ہوتا ہے. لیکن شیخ کا آپ دیکھو ذرا کہ اس طرح جو ہے میں اپنے گھر چلا جاتا ہوں اس میں کیا ہے، لیکن گرم گرم چپاتی اور جناب کباب، گرم 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 چائے. فرمایا منہ اس طرف کر کے کھاؤ. نظر حضرت والا اس کی بہت احتیاط فرما دیتے کہ کسی اور کی نظر نہ لگ جائے. عجیب، یعنی کہ وہ بات یاد آتی ہے تو بس کیا کریں، کیا وہ دن تھے، کیا وہ راتیں تھیں، کیا حضرت والا، کیا حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ. سبحان اللہ. ابھی آج فجر سے پہلے ہی ذہن میں ایسا آ رہا تھا، ایسے ہی ذہن میں، کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساتھ ساتھ ہیں اور مجلسیں ہو رہی ہیں اشعار کی وہاں.
مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں سے تھے، اور مفتی شہید صاحب بہت تعریف کرتے تھے کہ بالکل کاپی تھے تھانہ بھون کی نقل. لیکن ان کے مسجد میں قتل ہوا، بےغتی اور دیوبندی میں لڑائی ہو گئی، کئی لاکھ کی خانقاہ بنی بنائی. اعظم گڑھ کے بہار میں رہتے تھے، فتح پور ٹال نرجا اس کا نام تھا، مشکل سے 2-3 ہزار کی آبادی، کئی لاکھ روپیہ، بڑے شیخ مشہور تھے، مریدین بڑے بڑے وہاں مالدار، اور وہ علاقہ بھی بہت مالداروں کا ہے. کئی لاکھ کی اتنے حجرے اور سالکین کے ٹھہرنے کی، سب چھوڑ چھاڑ کے الہ آباد ہجرت کر گئے، کیونکہ مولانا پر بھی مقدمہ چلوا دیا انہوں نے. اب بظاہر تو مولانا پر بڑی مصیبت آئی کہ صاحب بنی بنائی خانقاہ چھوڑنا پڑا، لیکن کیا کعبے سے بڑھ کر خانقاہ تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرایا گیا. میں نے مکہ شریف میں ایک تقریر کی مولانا شمیم.
تو عجیب معاملات ہیں، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہجرت کا بھی اسی میں سمجھ میں آ رہا ہے ماشاءاللہ. یہ کعبہ سے بڑھ کر خانقاہ تھی، اور یہ ذہن میں رکھنا کتنے سال، کتنے برس پہلے کئی لاکھ کی خانقاہ. ٹھیک، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس میں آواز آئی 2-3 دفعہ نا. حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کیا معلوم تھا کچھ برسوں کے بعد مجھے ہجرت کرنی پڑے گی. آپ سوچو تو صحیح، یہ مضامین اس وقت 8-9 کبھی 10 کبھی 12 ملکوں میں سنے جا رہے ہیں. حضرت والا کا تو ہے ہی ظاہری بات ہے سب کچھ، لیکن اس پھیلانے کا جو حضرت نے دعائیں مانگی تھی، ذریعہ کون بنے؟ آج ہم سن رہے ہیں، دعائیں دے رہے ہیں، اور جس کو نہیں بھی معلوم کہ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی محنتیں ہیں، لیکن دعا تو جائے گی نا وہاں تک. تو उनको जो फायदा होगा, जो दिल से दुआ उनको, चाहे वो दुआ करें या न करें, लेकिन अल्लाह ताला तो उन पब्लिक जहां जहां तक पहुंच रहा है, जो खुश हो रहे हैं, अभी इस वक्त मैसेज की भरमार हो जाएगी, वो कंप्यूटर पर भी और मेरे मोबाइल में भी, और कभी कभी इतने मैसेज आ जाते हैं कि फिर मैं सुबह को जब आता हूं फिर पढ़ता हूं एक एक मैसेज, और आजकल तो इतने ज्यादा आ रहे हैं कि मैं सबका जवाब भी नहीं दे सकता, सीधी सी बात है। जब वो किसी काम से हटकर नमाज पढ़कर या मजलिस के बाद या सोकर उठता हूं तो लाइनें लगी हुई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला पढ़ने की तौफीक अता फरमाते हैं, लेकिन आजकल वक्त की कमी है। लेकिन कहने का मकसद ये कि हजरत वाला ने जो दुआएं की अल्लाह ताला से कि अल्लाह मेरी आहो फुगा को पूरी दुनिया में फैला दे, तो जरिया तो हजरत मीर साहब रहमतुल्लाह अलैह बने ना। डॉक्टर अब्दुल मुकीम साहब हैं वहां पर दामत बरकातुम लाहौर में, खुद मुझसे फोन पे फरमाया कि हजरत मीर साहब रहमतुल्लाह अलैह को मैं अपना मोहसिन नहीं समझता, सिर्फ उनके एहसान को मैं उम्मत पर एहसान समझता हूं, जिन्होंने हजरत वाला के मजामीन को जमा किया और किस तरह पूरी दुनिया में फैला, फिर उसे तर्जुमे। अब इस वक्त मॉरिशस में हमारे दोस्त हैं, मजलिस कर रहे हैं, कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह की कोई भी किताब वो किसने लिखी? हजरत मीर साहब रहमतुल्लाह ने लिखी। अब जो वहां बैठे हुए जो जिनको फायदा हो रहा है सवाब का, जैसे अभी हजरत ने फरमाया कि अल्लाह वाले आरिफीन काहिल लगते हैं, लेकिन दुनिया के मामले में काहिल है। अगर ये वैसे ही काहिल होते तो आखिरत में तेज क्यों होते? हजरत मीर साहब रहमतुल्लाह अलैह को हजरत ने जबरदस्ती स्टील मिल में मुलाजमत करवाई कि आपके खानदान वाले आपका मजाक न उड़ाएं, तो हजरत मीर साहब रहमतुल्लाह अलैह स्टील मिल के मामले में चुस्त थे क्या? तो अगर कोई फर्ज करेंगे कि अरे ये चले गए और ये अल्लाह ये जो आरिफीन है अल्लाह वाले जो हैं ये काहिल हैं, वह काहिल होते तो दुनिया के मामले में तो ठीक, आखिरत के मामले में चुस्ती हुए। यहां तक कि हजरत मीर साहब रहमतुल्लाह अलैह परचेज अफसर थे स्टील मिल में, और जिनको तारीख पता है अभी की भी माजी की भी पता है, कैसे कैसे लोग कहां कहां बन गए, कैसे कैसे लोग हराम के जरिए, और परचेज ऑफिसर जो वो ब्रीफ केस में पैसा रखते थे, और ऐसा कोई इधर करता यहां से खरीदो, क्यों खरीदो यहां से, दो जगह से पूछूंगा मैं, अपनी मर्जी से पूछूंगा, तुम कौन बोलते हो ये यहां से पूछूं मैं, वो पहले से मिले हुए होते थे, अब वो आस्ते आस्ते हजरत के सब दुश्मन बन गए। और अल्लाह की मदद ऐसी, दोपहर का खाना कहां खाए? होटल में खाया। होटल में खाना खाकर हजरत मीर साहब रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ ले आए, शायद खान का पहुंचे थे या नहीं पहुंचे थे ये ख्याल आया, ब्रीफ केस तो पैसों वाला होटल में रह गया, होटल में रह गया। अब जनाब वहां पहुंचे भागे हुए तो ब्रीफ केस ऐसे ही रखा हुआ है। तो दीन के काम में कैसे चुस्त, आप देखो, आप अगर कोई काहिल हो, एक मिसाल है, तो ये बयान करना, लिखना, पढ़ना, पहले हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह हजरत मीर साहब रहमतुल्लाह अलैह को भेजते थे जुम्मे को और पीर को कि आप जाके पहले किताब पढ़िए, फिर हजरत मीर साहब रहमतुल्लाह अलैह किताब पढ़ते थे, वो इस वक्त ऐसा लगता है मेरे नजरों के सामने, अल्हम्दुलिल्लाह चश्मा यहां लगाया हुआ, सफेद कुर्ता, सफेद इजार, सफेद टोपी, कल्फ वाली माशाल्लाह, और हजरत के मजामीन को पढ़ रहे हैं और फिर उसमें तस्सी भी फरमा रहे हैं। क्या कैफियत होती थी हजरत मीर साहब रहमतुल्लाह अलैह की किताब पढ़ने की, जिसने सुना है उनसे पूछ लीजिए क्या दर्द था, किस तरह पढ़ते थे, अशकबार होते थे, फिर दरमियान में रुक जाते थे, पढ़ा ही नहीं जाता था, हालांकि इतना लिखा, इतनी बार देखा, इतनी बार पढ़ा, लेकिन जब पढ़ते थे तो कितनी बार रुक जाते थे, पढ़ नहीं सकते थे हजरत मीर साहब रहमतुल्लाह अलैह, ऐसा लगता था जैसे अभी चीख निकल जाएगी। और फिर हाल को जब्त हजरत वाला ने सिखाया था तो उस पर जो रोकते थे ना हजरत मीर साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने आप को, तो बस क्या हालत होती थी मैं आपको बता नहीं सकता। वो सब बातें अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मीर साहब रहमतुल्लाह अलैह का इस तरह चश्मा लगाकर और इस अंदाज से पढ़ना और क्या अजीब, फिर हजरत वाला तशरीफ ले आते थे, फिर हजरत वाला का बयान शुरू हो जाता था माशाल्लाह, और हजरत वाला टेप भी कर रहे हैं, लिख भी रहे हैं, कुछ नुकते जो हैं वो लिख भी रहे हैं माशाल्लाह। और मैं आपको बताऊं, सबको पता है कैसेट के आखिर में हेड क्लीनर की जगह होती है ना, जिसकी पट्टी नहीं होती, सफेद रंग का जो होता है हेड क्लीनर होता है उसमें लगा हुआ, तो उस पर वो बयान टेप नहीं होता। आप एक कैसेट उठाकर देख लीजिए हजरत वाला का करामत, कि जब वो सफेद पट्टी, हजरत ने बयान फरमाया कि बदनजरी हराम है आंखों का, अब पट्टी खाली हो गई। अब जब दूसरी तरफ लगता था बयान तो वहां से शुरू हो रहा है बदनजरी हराम है आंखों का जिना है, ये कैसे हो गया? स्टार्ट की पट्टी भी तो वो होती है ना जिसमें बयान टेप नहीं होता। और मैंने साउथ अफ्रीका में दो मरतबा अपने आंखों से देखा कि हजरत ने कैसेट पर ए साइड था उस पर लिखा कि मस्जिद नूर डरबन का बयान है, मेरे सामने लगाया हजरत ने वो बयान, ठीक है नया बयान शुरू हो रहा है ना, तो अब वो बयान जो है वो एक साइड खत्म हुई, हजरत ने दूसरी साइड लगा दी, ठीक। अब इसके बाद नई कैसेट लगनी चाहिए ना, तो हजरत ने, मैं इस बात को नहीं समझ सकता, पहले बता देता हूं, फिर किसी को समझ में ना आए तो मुझे नहीं कहना। अब एक घंटे का, डेढ़ घंटे का बयान हो गया ना, अब कैसेट नहीं लगनी चाहिए ना, हजरत मीर साहब रहमतुल्लाह हजरत को देख रहे हैं उसी साइड को पलट दिया दोबारा, और वो बयान पता नहीं किस तरह चला आ रहे हैं। वो जम्बिया से हम लोग जा रहे थे, साउथ अफ्रीका से जम्बिया जा रहे थे, तो हजरत का बेड जो है वो लाजमी जाना था साथ में। ये हजरत के बीमारी की बात, तबीयत नासाज की बात कर रहा हूं। तो मुझे जहाज में खिड़की के पास जगह मिली, पहले तो पहुंचे देर से, मौलाना हुसैन भैया साहब रहमतुल्लाह अलैह का मिजाज था, वो उनको उनके इधर उधर हो नहीं सकता था, तो वो अपने हिसाब से जब भी आते आखिरी टाइम में आते, या ये तो फ्लाइट भी बंद हो चुकी थी, शोर शुरू कर दिया, उनको कानून का पता था, कहा कैसे आप नहीं ले जाएंगे हमें, शोर शुरू कर दिया। वो कहा अच्छा अच्छा एक मिनट, फिर काउंटर खोल के ऐसे किया, लेकिन बेड नहीं मिलेगा वहां पर आपको, तो कैसे नहीं मिलेगा बेड, अभी कैसे रख सकते हैं हम इस बेड को। अब ये बातें हजरत मुफ्ती हुसैन भैयात साहब और एयरलाइन में बात हो रही है, हमें कहा जल्दी जाओ ना, तुम लोग क्यों खड़े हो यहां पर, फ्लाइट उड़ जाएगी। हम भी चले गए। अब इसके बाद मैंने अपनी आंखों से देख रहा हूं कि जहाज ने चलना शुरू किया और हजरत वाला का बेड ट्राली पे रखा हुआ है, बेड नहीं चढ़ सका। अब मैं क्यों भाई इस मामले में, अल्लाह माफ फरमाए, वैसे भी झूठ बोलना जायज थोड़ी है, तो मैं तो अपनी आंखों से देख रहा हूं, वो बता रहा हूं ना कि जहाज चलना शुरू हो गया और ट्राली पर बेड रखा हुआ है, और जब जम्बिया में हम बेल्ट पर सामान के लिए खड़े हैं, सबसे पहले बेल्ट चला रहे हैं। अब किसी को समझ में ना आए तो हम क्या कर सकते हैं भाई, तो जो आंखों देखी ये चीज है वो मैं आपको बता रहा हूं। अल्लाह ताला इन प्यारों की नाकदरी को माफ फरमाए, और जो हमारे लिए इतना खजाना छोड़ गए, अल्लाह उसको बस ऐसे दामन को मजबूती पकड़ा जाता है ना, तो हाथों से और दांतों से हजरत ने फरमाया पकड़ा जाता है, बस इन तालीमात में ऐसे ही चिपक जाए, कोई मरता कोई जीता ही रहा, इश्क अपना काम करता ही रहा। इसलिए इधर उधर लोग कहें ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है, आप हमारे शेख नहीं है। बस वो मौलाना नासिर साहब आए थे ईरान से, उर्दू नहीं आती थी उनको, तो हजरत मीर साहब बेचारे सादे थे, तो डांट पड़ती थी हजरत मीर साहब रहमतुल्लाह अलैह की। वो आकर हजरत से कहते, हजरत आज हजरत मीर साहब रहमतुल्लाह ने मुझको डांटा है। हजरत ने फरमाया कि आप उनसे कह दें कि भाई आप जो है मेरे शेख नहीं है, वो भूल जाते थे। हजरत ने फरमाया लिखो, फिर हजरत ने उनको लिखवाया कि हजरत मीर साहब आप मेरे शेख नहीं है, आप मुझे डांटा न करें। अब हजरत मीर साहब डांट रहे हैं, वो पर्चा तलाश करें, पर्चा है का वो कभी यहां तलाश कर, अब हजरत मीर साहब हंस पड़ते, कभी कभी पर्चा पीछे मिल जाता फौरन, हजरत मीर साहब आप मेरे शेख नहीं है, अब हजरत मीर साहब हंस रहे और पर्चा पढ़ रहे हैं। यही है हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह का वक्त लगाना, फारसी दा, उर्दू नहीं आती थी, लेकिन ये जो हजरत शेर सुनाते हैं ना, ये इनका है। चंद चमचा चाय में चीनी मिला चच्चा और चच्ची को छान कर पिला। आप बताओ ये अल्लाह वाले की करामत नहीं है? आप बताओ भाई, हम और आप कहके दिखाते, हमारी तो फिर भी उर्दू कुछ न कुछ आती है ना, वो मुझे अब तक वो मंजर याद आता है ना, वो इतना सादे बेचारे पर्चा तलाश कर रहे हैं, कभी यहां। हजरत मीर साहब रहमतुल्लाह अलैह को पता चल गया था हजरत ने लिखवाया है, अब वो पर्चा तलाश कर रहे हैं, हजरत हंस रहे। और मैंने तो कई बार देखा हजरत मीर साहब रहमतुल्लाह अलैह को, मैंने तो देखा कभी अपने लिए गुस्सा नहीं आया। हजरत की सेहत, हजरत का आराम, हजरत का काम, हजरत की तालीमात, बस कहां से बर्दाश्त हो सकता था जो शेख के रंग में डूबा हुआ हूं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और हजरत वाला कभी कभी एक कैफियत होती थी ना, डांट देते थे, खबरदार टेप किया तो मेरी तरफ देखो, साहब रिजवान मुझमें टेप नहीं करते थे, दिल पर टेप करो। लेकिन अल्लाह हजरत मीर साहब रहमतुल्लाह अलैह के दर्जात को बुलंद फरमाए, थोड़ी देर के बाद फिर कड़क टेप, माशाल्लाह ये भी आवाज टेप कर रहे हैं, नजर फरमा रहे खबरदार टेप मत कर, वो भी टेप कर रहे हैं, माशाल्लाह अजीब माशाल्लाह। 113 खवातीन ने कॉन्फ्रेंस पर बयान सुना, 113 लिखते हैं 113 घर, और उसमें से कुछ खवातीन के पता नहीं कौन से शहर से मैसेज आए कि अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बयान सुनती हैं और सुनाती भी हैं माशाल्लाह। अल्लाह हजरत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुम के मामू है या खालू है मुझे याद नहीं है, कनाडा में होते हैं, तो वो हमारे दोस्त कनाडा के बता रहे हैं, मैं उनको बयान भेजता हूं और वो हजार दोस्तों को बयान भेजते हैं। हजरत मीर साहब रहमतुल्लाह अलैह का मामला सोचे था, और कितने लोग लिखते हैं पॉइंट्स को, जरूरी पॉइंट्स को लिखते हैं, कितनी खवातीन नुकात को लिखती हैं, तो वो फिर बयान, फिर वो वक्त याद आ जाता है माशाल्लाह। हमारे दोस्त यहां कितने लिखते रहते हैं, अब ये माल कहां तक कब तक जाएगा उसका आप हिसाब किताब करके اور دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ نے کیسے پیارے سرشتے سے جوڑا اور کیسے پیاروں سے جوڑا، جوڑا بھی تو کن سے جوڑا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، میر و پیر کی داستانیں رہیں گی قیامت تک، ماشاء اللہ سب زیادہ ہی زیادہ رہیں گی بس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی مزہ آیا دوستوں کو بھائی؟ ماشاء اللہ. اور اتنے سارے کیسٹوں میں اللہ تعالیٰ، مجھے تو پتا بھی تھوڑی کوئی لکھا ہوا ہے اس میں کہ اس کے کیا کیا ہے اس نے، لیکن بس اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے حضرت کے صدقے بٹن دبا دیا اور مال چلا آ رہا ہے، مال چلا آ رہا ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.